اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر. آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر رہی پہلی بار حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات. ان میں دو اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں, اس کو مثبت کہا جا رہا ہے, بڑا اچھا ماحول بتایا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے کہا ہے جب تک مذاکرات جاری رہیں گے جنگ بندی عمل ہوگا, ان کی جانب سے کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے دونوں جانب سے بات ہوئی ہے. کتنی یہ ملاقات اہم ہے, کتنی بڑی خوشخبری ہے, اسی بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں حامد رضا, سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے, اور ہمیں جوائن کیا ہے مراد سعید نے, ایم این اے ہیں, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. پہلے حامد رضا صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں, ناقد تو بہت سے ہیں ان مذاکرات کے, لیکن جو آج ہوا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے, باقاعدہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا, لیکن ایک بڑی خوشخبری ہے آپ کی نظر میں یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ غازی صاحب, میں تو اسے کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کی خبر نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنگ بندی کے بعد بھی مختلف قسم کے واقعات ہوئے, بم دھماکے ہوتے رہے, کیجولٹیز ہوتی رہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی, پولیو ورکرز پر حملے ہوتے رہے اور بے گناہ پاکستانی مرتے رہے, لیکن اس کا ایک نیا طریقہ نکال لیا گیا کہ اب آپ کسی نئی تنظیم کو سامنے لا کر اس کی طرف سے ذمہ داری اس کے سر پر تھوپ دی جاتی ہے اور طالبان اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں. تو دراصل انہوں نے اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑا, اسی راستے پر بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کرنے میں اسی طریقے سے مشغول ہیں, لیکن صرف ذرا تھوڑی ڈائیورژن دے دی گئی کہ کوئی ایسا گروپ سامنے بتلا دیا گیا جو شاید کوئی پہلے منظر عام پر نہیں تھا. دوسرا, جہاں تک مذاکرات کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ قیدیوں کے لسٹ آپس میں تبادلہ کیا گیا اور اس حوالے سے کوئی بریک ہے, تو ہم تو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد انفارچونیٹلی شام میں پہنچا دی گئی ہے, اور یہ قیدی جو یہاں سے چھوڑے جا رہے ہیں یہ دراصل شام میں بھیجنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں, اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی معاہدہ ہو, کوئی بھی ایسا سلسلہ ہو, تو وہ لوگ جنہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی, جنہوں نے اسٹیٹ کے تمام آرگنز کو متاثر کیا, جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا معصوم خون بہایا, تو اب ان کو اگر آپ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ملیٹنٹ گروپ کے اندر شامل ہیں تو آپ بھیک مانگ کے ان کو آزاد کر دیں, ان کو جیلوں سے چھوڑ دیں, تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کی تمام جیلیں ختم کر دینی چاہیے, اور پاکستان کی تمام جیلوں میں کسی نے ایک قتل کیا ہے, کسی نے دو کیے ہیں, کسی نے سائیکل چوری کیا ہے, کسی نے کسی کی بھینس چوری کی ہے, کوئی گاڑی چوری میں اندر ہے, یہ بہت مائنر کرمنلز ہیں. آپ فار گاڈ سیک, اگر آپ ہیومینیٹیرین کرمنلز کو باہر بھجوا سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اتنا باعزت قسم کے اگریمنٹ کر کے انہیں باہر لانے کے اقدامات کر سکتے ہیں, تو ان مائنرز کو بھی معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے پاکستان کے تمام شہریوں کو فی الفور رہا کرنے کا اعلان کیا جائے.
یہ جو پہلی ملاقات تھی, آپ کو اس سے کوئی امید نہیں بلکہ آپ میں اب بھی مایوسی ہے. مراد سعید صاحب, یہ بات تو درست لگتی ہے کہ جنگ بندی کی توسیع کا پھر کیا فائدہ جب پولیو ورکرز نے بھی مرنا ہے, دھماکے بھی ہونے ہیں, کیا فائدہ پھر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسامہ, کہ میں آغاز کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے منشور سے. پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں اس مسئلے کا حل کچھ یوں تھا کہ آپ آئسولیٹ کرو اور ایلیمینیٹ کرو, آپ پہلے ایک پیس پروسیس کا, پیس ٹاکس کا آغاز کرو. اب جب پیس ٹاکس کا آغاز ہوئے تو اسامہ, میں آپ کو اس کے فوائد اور اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے یا کیا اچھی خبر ہے, میں وہ آپ کی طرف اس کی طرف لانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب سیز فائر کا اعلان ہوا ہے تو پہلے بھی ہم سمجھتے تھے کہ ایک تو امریکہ کی جنگ کا ریئیکشن آیا اور اس میں دہشت گردی سے اضافہ ہوتا گیا, پھر لال مسجد کا واقعہ ہوتا ہے, یہ ماضی کی بہت ساری کہانی آپ کے سامنے ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ایجنسیاں پاکستان میں سرگرم ہے وہ بھی بے نقاب آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جب سیز فائر کا اعلان ہوا ہے تو نئے جو گروپ ہے اس کی بھی وہ نام سامنے آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے پنجاب کے حوالے سے جو ایک رپورٹ, انٹیلیجنس رپورٹ جو آئی تھی, جو کہ بلوچستان کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ لاہور کے اندر قائد اعظم کے مزار پہ جو واقعہ ہوا تھا, جو اسی قسم کے حملے کی تیاری ہو رہی ہے, تو انٹیلیجنس رپورٹ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. تو یہ آہستہ آہستہ کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور اسی پیش رفت کیا ہو رہی ہے, آپ نے مسعود جو طالبان تھے ان کے حوالے سے سنا ہوگا, کیونکہ 2004 میں ان کے اوپر آپریشن ہوا, پھر آپریشن کی ریئیکشن میں جو لوگ دہشت گرد بن جاتے ہیں, ڈرون حملوں کی ریئیکشن میں بن جاتے ہیں, امریکہ کی جنگ میں جانے سے بن جاتے ہیں. تو جب ایک براہ راست مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے تو ریاست کو فائدہ ہوا ہے, रियासत को फायदा ये हुआ है कि अगर कोई सरेंडर होते हैं, कोई लोग रियासत के खिलाफ जंग से इनकार करते हैं और मजीद जंग नहीं चाहते, अगर इसी के थ्रू हमारे कबाइली इलाकों में अमन आता है, पाकिस्तान में अमन आता है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा पेशरफ्त है और एक अच्छी खबर है। उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि पहली मरतबा जब आपका फेस टू फेस और बराह रास्त मुजाकिरात का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसमें हमारे जो वाइस चांसलर थे इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी की, अजमल खान साहब के हवाले से भी बात हुई होगी, या सलमान तासीर साहब के साहबजादे के हवाले से भी बात हो गई होगी, और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे जो है उनके हवाले से भी बात हो गई। तो अगर एक तरफ
लेकिन वो कहते हैं कि आप हमारे कैदी भी छोड़ें, मुस्लिम खान को भी छोड़ें, आप अजमल खान को जिसने इख्बा किया हमाद उसको भी छोड़ें, सूफी मोहम्मद को भी छोड़ें, तो फिर इन सब को भी रिहा करें, दीगर जो लोग हैं उनको रिहा करें, क्या इन्हें रिहा करेंगे तो अमन हो जाएगा या वो लोग दोबारा
नहीं नहीं उसामा उनकी तरफ से जो आज मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जर्गे में जो लोग बैठे हुए थे या जो मुजाकिरात में जो लोग बैठे हुए थे वहां से जो खबर आई है उसमें उन्होंने जो तकाजा किया है तालिबान की तरफ से जो तकाजा आया है वो उन लोगों का है जो गैर अस्करी थे, मतलब उनका जो कैदी है उनके तबादले की बात अभी तक सामने आई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रियासत की रिट को कोई भी चैलेंज करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुल के कहा है कि जो आईन के दायरे के अंदर आते हैं, हमने टाइम फ्रेम का भी जिक्र किया था, हमने सीज फायर का भी जिक्र किया था, तो पाकिस्तान अगर खूनरीजी बंद हो रही है, अगर मुजाकिरात के थ्रू मसले के हल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा
तो फायदा उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छी बात है अगर मुजाकिरात से मसला हल हो, ठीक है। मुराद सईद एक मिनट, मैं हामिद रजा साहब की भी बात सुन लो। हामिद रजा साहब, ये तो फिर अच्छी बात है, तालिबान ने इस बात को माना है कि जो ग्रुप मुखालिफ है मुजाकिरात के उनको हम अलहदा कर देंगे, ये शर्त भी रखी गई थी, ये तो बड़ी खुशाइन बात है।
उसामा सईद साहब, मसला ये नहीं है, देखिए मसला ये है कि एक बाकायदा सिस्टमेटिक जरिए से तालिबान को पाकिस्तान की सियासी दायरे के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके इंतहाई तबाहकुन असरात अभी शायद आपको नियर फ्यूचर में तो बड़े खुशकुन सपने नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके तबाहकुन असरात जिस तरह अफगान वॉर के तबाहकुन असरात पाकिस्तानी सोसाइटी ने 10 साल के बाद बर्दाश्त करने शुरू किए, आफ्टर शॉक्स उसके 10 साल बाद आने शुरू हुए, इसके तबाह कुन असरात इसलिए कि अब ये अपने आप को एक पॉलिटिकल धारे में लाने के बाद जब आप इन्हें मुकम्मल आजादी दे देंगे, जब आप इनके जराइम को माफ कर देंगे, जब इन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, जब वो कौमी धारे के अंदर आ जाएंगे, तो आप फिर किस तरह गारंटी कर सकते हैं, आई मीन हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल जो इफ एट द एंड ऑफ द डे अगर तालिबान इसी किस्म की दोबारा हरकत करते हैं, जो कि यकीनन वो करेंगे। और उसामा साहब एक बात है कि मोमन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। देखें तालिबान पिछले 15 साल से पाकिस्तान में वहशत और बर्बरियत का जो खेल खेल रहे हैं, अफसोस हमें उस वक्त होता है जब पाकिस्तान के लिए जान देने वालों के लवाहिकीन से, शुहदा से, गाजियों के वारिसीन से तो ये नहीं पूछा जाता, उनको यहां तक बॉदर नहीं किया जाता कि आप उन्हें इस मामले पे आप उन्हें भी अपने साथ ले लें या उनको जस्टिफाई कर दें। और ऑन द अदर हैंड एक क्रिमिनल जिसने 60,000 लोगों का वहशियाना कत्लेआम किया है, आपको उसकी बात के ऊपर बहुत यकीन है कि वो जनाब आपकी हर बात को तस्लीम करेंगे, वो रियासत को तस्लीम करेंगे, वो आइंदा से ये काम नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो मेरा उसामा साहब सवाल ये है कि जिस तंजीम अहरारुल हिंद ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी मुजाकिरात उसी वक्त रोक के, तो सबसे पहले तालिबान को और हुकूमत को कहना चाहिए था कि जब तक अब अहरारुल हिंद को इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सजा ना दे दी जाए, उनके जिम्मेदारान को पकड़कर कैफरे किरदार तक ना पहुंचा दिया जाए स्पीडीली विद द हेल्प ऑफ तालिबान,
मुजाकिरात
को सस्पेंड करते हैं,
उनको सजा तालिबान ने देनी है, हुकूमत ने देनी है।
देखें हुकूमत उसामा साहब, हुकूमत की रेट की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि हुकूमत तालिबान से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमें बताएं अहरारुल हिंद कहां पर है, जहां पर हुकूमत इतनी कमजोर पिच के ऊपर खेलेगी कि वो तालिबान से रिक्वेस्ट करेगी, तो फिर वहां पे आप बेहतर समझ सकते हैं कि उसके क्या असरात सामने आएंगे। और जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं,
मुराद सईद आपने कुछ बातों का हवाला दिया कि क्या बातें हुई, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां ये बात भी हुई है कि फौज का जो हफ्तावार गश्त है, हफ्ते में एक दिन फौज वहां से गुजरती है, वो भी ना गुजरे, हमें आने जाने की आजादी हो, तालिबान ये कह रहे हैं, यानी जो चेक पोस्ट है वहां पर है वो खत्म की जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? हमें ये स्टेप लेना चाहिए रियासत को?
देखिए उसामा, ये जो वहां पे एक हुकूमत ने कमेटी मुंतखब की है, उनके पास इख्तियारात क्या है या क्या हुकूमत की तरफ से उनको कहा गया है, रियासत की तरफ से कौन सी बातें होगी, ये वो रखेंगे। हामिद रजा साहब ने जो बात की, मैं उसकी थोड़ी सी माजी की तरफ जाना चाहता हूँ। उसामा, उसामा अगर आप देखें कि हमें 60,000 हमारे पाकिस्तानी इस जंग का निशाना बन चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। मेरा घर उसमें खुद ही दहशतगर्दी की जंग का शिकार हो गया। मेरी वालदा आज भी पैरालाइज है, वो भी इस दहशतगर्दी की जंग की वजह से है। लेकिन मैं भी अमन चाहता हूँ, मैं मुज़ाकिरात चाहता हूँ। मुज़ाकिरात के थ्रू अगर मेरे पाकिस्तान के मजीद खून बहना बंद होता है तो मैं उसकी हिमायत करूंगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि 1 करोड़ कबायली जो वहां पर बसते हैं, हमारे मसूद ट्राइब जो कि 10 साल पहले यहां पे ऑपरेशन हुआ था और आज भी 10 साल गुजरने के बावजूद वो अपने घरों को वापस नहीं जा सके, मैं उनको अपने घरों में और अपने मकानात में और अपने उन मैदानों में फिर खेलता कूदना देखना चाहता हूं। उसके साथ
तालिबान की शर्त पर जैसी शरीयत वो चाहेंगे उसकी जिंदगी गुजारना होगी, उसके मुताबिक जिंदगी लोगों को गुजारना होगी। हम लश्कर भी निशाना बनते रहे।
देखिए उसामा, बात क्या हो रही है, ये जो हम बात करते हैं कि इतने लोग मरे, जाहिर सी बात है कि 1-2-3 चीजें गलतियां रियासत ने की थी। रियासत ने गलतियां क्या की थी, 1979 में इस जंग में कूद पड़े, फिर 2001 में 9/11 के बाद आप लोग अमेरिका के इत्तेहादी बन जाते हैं, फ्रंटलाइन स्टेट बन जाते हैं, फिर हमारी फिजाई सरहदों के खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है, ड्रोन हमलों में पिशावर हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक 1500 बेगुनाह शहीद हो जाते हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं, अगर अमन के जरिए कबाइलों को हम खुश करना खुश कर पाए, जो वहां पे आम मासूम लोग हैं उनको अपने साथ मिला, जो रिएक्शन में आ चुके हैं, जो कि ड्रोन हमलों की रिएक्शन में, जो मिलिट्री ऑपरेशन की रिएक्शन में, वो लोग भी अगर हमारे साथ शामिल होना चाहे। और उसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है कि 25 से 30 ऐसे ग्रुप है जो मुज़ाकिरात के लिए तैयार है, जो असलहा और जो सरेंडर होने के लिए तैयार, तो ऐसे लोग अगर जो असलहा छोड़ देते हैं, गलत रास्ता छोड़ देते हैं, रियासत के रिट को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसमें रियासत का ही फायदा है। हम तो उस फायदे को देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मंशूर का भी था कि आप आइसोलेट करो उनको और फिर एलिमिनेट करो।
जी आमिर साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं प्लीज।
जी जी, मैं सिर्फ एक साहब का, मुराद साहब मेरे भाई हैं और यकीनन इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। देखें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप मुजाकरात करने जा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल की और ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स करने वाले शख्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, देखें दोनों दो तरह के लवाहिकीन हैं, एक वो जो अपने शहीदों का खून माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक वो जो तैयार हैं। हमारा नुक्ता नजर यह है कि आप कम से कम उन लोगों को तो ऑन बोर्ड लेके आए जो नहीं है, उनको समझाएं, उनके आगे तमाम सिनेरियो रखें, उनको भी एतमाद में लें, कम से कम उन्हें तीसरे दर्जे का शहरी समझते हुए ये उनको आप इस मामले से बाहर ना निकाल दें। और दूसरी बात ये, भले मुजाकरात करें लेकिन फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम मुजाकरात के अंदर कम से कम आईन और शरीयत का हवाला ना दिया करें। उसामा साहब, हम अगर हुकूमत ये डिक्लेयर कर दे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और जो कि अकॉर्डिंग टू द शरिया ऑफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम इसको बालाए ताक रखते हुए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ठीक है, भले हमें जो इसके ऑब्जेक्शन है वो भी खत्म कर देंगे। क्योंकि देखें, शरीयत में सबसे पहली बुनियादी फिलॉसफी है कि खून का बदला खून है। तालिबान तो इस बात पर भी तैयार नहीं है कि 60,000 पाकिस्तानियों का खून बहाने के बाद वो उस पर कौम से माफी ही मांग ले, चले खून का बदला खून ना दे, माफी तो मांगे। लेकिन जब आप इन तमाम हकीकतों को बालाए ताक रखते हो, आपका आईन कहता है कि किसी निजी मलेशिया के साथ आप मुजाकरात नहीं कर सकते, कोई गिरोह निजी मलेशिया नहीं रख सकता, तो जब आप आईन और शरीयत की बात करते हैं तो फिर इनसे बालाए ताक रख के भले बिस्मिल्लाह मुजाकरात करें, हमें कोई इतराज नहीं।
वैलिड पॉइंट है, बड़ा अहम है। फिर उनको कालेदम तो ना कहें, तालिबान को आप कालेदम क्यों कहते हैं, गैर कानूनी एक जमात फिर उनको क्यों डिक्लेयर करते हैं, पहले उन्हें फिर इस तरह कहें कि मान जाए कि नहीं आप हमारे भाई हैं, जिस तरह जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब अमीर हैं उन्होंने कह दिया, आप पहले उन्हें डिक्लेयर करें अपना भाई उसके फिर बात करें उसके बाद।
नहीं, देखिए उसामा, ये जो APC था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें इन्होंने तमाम पॉलिटिकल जुमातों ने उनको स्टेक होल्डर डिक्लेयर किया था, मैंने नहीं किया था। तमाम पॉलिटिकल जुमातें मुजाकिरात के हामी थे और उन्होंने मुजाकिरात के लिए वोट दिया था। अब बात आती है कि हम उनके साथ मुजाकिरात कर रहे हैं, तो हमारे पाक फौज ने भी गुलबादर के साथ, मुला नजीर के साथ, साउथ वजीरिस्तान में इस किस्म के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, पीस टॉक्स हो चुके हैं, और वहां पे सुकून और अगर वहां पे हालात थोड़े नॉर्मल हुए तो इसके फवायद सामने आ चुके हैं। और वो पाक फौज ने किया था, वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था। और इसके साथ अगर तमाम जुमातें इस बात पे मुत्तफिक है कि हम मुजाकिरात, क्योंकि देखिए नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, खैबर एजेंसी में ऑपरेशन हुआ, बाजौड़ में हुआ, फिर आपके मलाकन डिवीजन के साथ असला में ऑपरेशन हुआ, बाकी पूरी जो एजेंसियां है वहां पे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन कभी तो इस चीज को, इस खेल को रोकना है, हमने पाकिस्तान के अंदर कभी तो खुनरेजी को रोकना है। अगर मकसद ये है कि हम ऑपरेशन करके इलाका डिक्लेयर करें तो वो बात समझ में आती है, लेकिन हमने दूरस्थ नतीजे इसके देखने हैं और एक मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान में अम की तलाशी है हम, तो हम वो तलाशी अगर है तो फिर हमें मुजाकिरात के जरिए ही टेबल टॉक के जरिए ही इन मसले का हल करना होगा। कौन से अवामिल थे जिससे दहशतगर्दी में इजाफा होगा, इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ, उन अवामिल को एड्रेस करना होगा और बाकी जो सीरिया के हवाले से इन्होंने
और अगर नाकाम हुए फिर दूसरा ऑप्शन देखा जाए। बहुत शुक्रिया शुक्रिया मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली और हामिद रजा साहब सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। दो मुख्तलिफ सोचे हैं पाकिस्तान में क्या किया जाए, अभी तो मुजाकरात चल रहे हैं, आज पहली बार हुकूमत और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुजाकरात हुए हैं, बात हुई है कैदियों की रिहाई की दोनों जानिब से और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान ने कहा है कि जब तक मुजाकरात जारी रहेंगे जंगबंदी भी जारी रहेगी। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर इससे ज्यादा क्या कहा जाए, एक बहुत अहम पाकिस्तान के मशहूर दानिश्वर हैं, अदीब हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब, उन्होंने क्या कहा है वो देखिए।
अपने शाह सवारों को कत्ल करने वालों से खून बहा तलब करना, वारिसों पे वाजिब था खून बहा अदा करना, वाजबात की तकमील मुनसिफों पर वाजिब थी, मुनसिफों की निगरानी कुदसियों पर वाजिब थी, वक्त की अदालत में एक समत मसनद थी एक समत खंजर था, ताजे जर निगार एक समत एक संत लश्कर था, एक तरफ थी मजबूरी एक तरफ मकसद था, ताइफे पुकार उठे ताजो तख्त जिंदाबाद साजो रख्त जिंदाबाद, खल्क हमसे कहती है सारा माजरा लिखे किसने किस तरह पाया अपना खून बहा लिखे, चश्मे नम से शर्मिंदा हम कलम से शर्मिंदा सोचते हैं क्या लिखे।
तालिबान से मुजाकरात की मुखालिफीन को तालिबान से जंग लड़ने और उसका मजा चखने का मशवरा दरअसल मौलाना समीउल हक की खुली धमकी है, नोटिस किसी ने लिया ना ही कोई लेगा।
तालिबान की मुजाकराती कमेटी के अहम तरीन रुकन और जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह जनाब मौलाना समीउल हक ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि जो नाम निहाद दीनी तबके सेकुलर और लिबरल लॉबियां दिफाई सिफारती सियासी तज़िया निगार एंकर्स और कॉलम निगार मगरिब के इशारों पर ऑपरेशन और जंग का तूफान बर्पा किए हुए हैं, उन सब का एक ब्रिगेड बनाकर इसे तालिबान से मुकाबला करने के लिए भेजा जाए ताकि उनका शौक जंग और जदाल पूरा हो। दूसरे लफ्जों में मौलाना समीउल हक तालिबान के मुखालिफ हलकों को बाबर करवा रहे हैं कि तालिबान एक जबरदस्त कुव्वत है जो उनसे लड़ने का मशवरा दे रहे हैं, वो उनके सामने जाएं फिर उन्हें जंग क्या होती है और कैसे लड़ी जाती है इसका पता चल जाएगा। समीउल हक साहब का यह मशवरा दूसरे लफ्जों में तालिबान के मुखालिफिन को खुली धमकी है, लेकिन जमाने की सितम ज़रीफ़ी है कि इस धमकी का नोटिस किसी ने लिया है और ना ही कोई लेगा। मौलाना समीउल हक की तरफ से दिए जाने वाले धमकी आमेज मशवरे के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हाहाकार मची हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर समीउल हक के बयान को दीवानगी करार दिया जा रहा है, वहीं तालिबान के कई रहनुमाओं के साथ उनके ताल्लुकात और बातचीत में उनके किरदार पर तनकीद की जा रही है। मुसन्निफ रजा रूमी ने ट्वीट की है कि समीउल हक क्यों लोगों को तालिबान से लड़ाने की बात कर रहे हैं, क्या ये 6 लाख फौजियों का काम नहीं है, ये दीवानगी है और हम आपके तलबा की तरह खुदकुश हमले नहीं करते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी रियासत काम करे और कानून की अमलदारी हो, बंदूक की नोक पर शरीयत ना हो। सोशल मीडिया पर इस वक्त मौलाना समीउल हक के इस बयान को लेकर शदीद एहतजाज करने वालों में और भी लोग शामिल हैं। इस मामले पर बात करने के लिए नौजवान सियासतदान पार्टी के रुकन मोहतरमा फलविशा खान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस बयान पर उनका नुक्ता नजर क्या है। फलविशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके ख्याल में बयान क्यों दिया गया, इससे तो लगता है शायद कौम ज्यादा खौफजदा हो जाएगी तालिबान से।
देखिए उसामा, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि इस मुल्क की तारीख में इससे ज़्यादा बुजदिल और इससे ज़्यादा ऑस्ट्रिच सिंड्रोम का शिकार कोई क़यादत शायद ना, और जो लोग इतना डरते हों केपीके में भी और पंजाब में भी और अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब को रूल कर रहे हैं फेडरल में भी, इससे ज़्यादा बुजदिल क़यादत मैंने नहीं देखी। और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि हर आदमी उठकर इस किस्म के बयान दे रहा है। जिस मुल्क में मैं पहले तो ये कहूंगी कि मौलाना साहब को हम सबकी तरफ से ये जवाब होना चाहिए कि हम हमारे हाथ में तो बंदूकें नहीं हैं, मगर फिर भी हम आपकी तरह बुजदिल नहीं हैं, हमें आप भेज दिए हम फिर भी लड़ लेंगे, मरेंगे लेकिन हम लड़ के मरेंगे, हम इस तरह बैठकर बंकरों में जो है हम सियासत नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जिन जिन मुजाकरात की बात उसामा ये कर रहे हैं जब एक मुल्क का वजीर आजम खुद और पार्टी इतनी बड़ी खुद एक आईन और कानून से और कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा हरकत करने जा रही है, तो फिर उस मुल्क में क्यों ना लोग ऐसी धमकियां दें, फिर मौलाना समीउल हक क्यों ना धमकियां दें। वो आजकल आपके हीरोज हैं, आपने उनको मीडिया स्पेस दे दिया, आपने उनको लीगल एक कवर दे दिया। लिहाजा आप भी जानते हैं कि आर्टिकल 256 इसी आईन का हिस्सा है, उसी आर्टिकल 256 के तहत कोई आदमी प्राइवेट आर्मी रेज नहीं कर सकता और इस किस्म की हर प्राइवेट आर्मी इलीगल है। ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 11 ऑफ द एंटी टेरर एक्ट सेज कि ये एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक यूनाइटेड नेशंस के पास ये एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप किस आईन के तहत इनसे मुदाखरात कर रहे हैं, और जो कुछ आप करेंगे वो मावराए आईन होगा, उसकी लीगल हैसियत जीरो होगी। और किसी भी अदालत में, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि फिर जब यह मुआयदा कोई सामने आए तो इसको खुद सुओ मोटो ले अदालत और कहे कि ये मावराए आईन है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुशर्रफ को और आर्मी ऑफिसर्स को आज बड़े फख्रिया तौर पे कहते हैं कि हम कानून की और आईन की बालादस्ती के लिए उनको ट्राई कर रहे हैं। सब पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप उसी आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन लोगों के हाथों उड़वा रहे हैं जिन्होंने 60,000 पाकिस्तानियों का खून नालियों में बहाया है। खुदा का वास्ता है।
लेकिन आप कह रही हैं कि आम आदमी शायद लड़ने को तैयार हो, लेकिन किस तरह आम लश्कर जो है उनके घरों में घुसकर उनके तमाम मर्दों के हाथ बांधकर उनको शहीद कर दिया जाता है। यहाँ तो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इंसदादी पोलियो मुहिम में शरीक होती हैं, उनको घरों में घुसकर अगवा करके उस वक्त कत्ल कर दिया जाता है। आम आदमी तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकता,
क्यों नहीं कर सकता? जब हम एक कौम के तहत खड़े होंगे तो कितनों को मारेंगे? वो लेडी हेल्थ वर्कर तो मैं कहती हूँ इन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और ये इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर केपी के उनसे बहुत ज्यादा दलेर औरत थी, उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। ये लोग क्या बुजदिल की आदत हम पे मुसल्लत हो गई, रोज कहते हैं खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? सबसे पहली बात यह कि जो सीज फायर की ये बात करें, वो सीज फायर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, वो सीज फायर दहशतगर्दों के मफाद में है। ये एक बेसिक बात है। आप उनको रिस्पाइट दे रहे हैं, आप उनको जगह दे रहे हैं, आप उनको सांस लेने का मौका दे रहे हैं। उन पे जब स्ट्राइक्स हुई तो वो आपकी तरफ आए, उन्होंने देखा कि एक बहुत वो अपने मकसद में बहुत ज्यादा कामयाब है, ये मैं उनको क्रेडिट देती हूँ। और आप अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका इकतदार दवाम पकड़े, आप पंजाब को किसी तरीके से बचाएं। और आपको खैर पंजाबियों की भी फिक्र नहीं है, आप सिर्फ अपने इकतदार की खातिर और पंजाबी के वोट की खातिर आप पूरे मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं।
ज्ञान की वजह ये तो नहीं है कि पहले हमने ऑपरेशन देखे हैं, उन्हें कामयाबी नहीं देखी, और साथ ही साथ जिस तरह इमरान खान हो, जब सब लोग मिलकर बैठे थे एपीसी में, तब सब ने पीपल्स पार्टी ने माना था कि मुजाकरात होने चाहिए। इमरान खान ने कहा कि हमें बताया गया है कि इम्कान बहुत कम है, अगर हम तालिबान से जंग करते हैं जीत का इम्कान बहुत कम है। शायद इस वजह से, इस यकीन से मौलाना समीउल हक ने बयान दिया कि तालिबान से जीता नहीं जा सकता।
इससे ज्यादा बेवकूफी का सामा कोई बयान हो सकता है? किसी मेच्योर लीडर की तरफ से आप अपनी फौज को इस तरह रन डाउन कर सकते हैं? ये ट्रीजन नहीं होता है, आप मुझे खुद बताइए। और उस एपीसी का रोना हमें बंद कर, उस एपीसी में तो तालिबान का जिक्र भी नहीं था, उनका नाम भी नहीं था। ये जो अभी मुराद सईद साहब कह रहे थे कि स्टेक, उसमें तो नाम ही नहीं था कि किससे मुजाकरात करने जा रहे हैं। और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसलिए साइन किया क्योंकि हमें पता था कि ये कहां बेल मंडे नहीं चढ़ने वाली, और अगर हम साइन ना करते तो ये कहते कि ये तमाम तर जो इनका ये एक फसाद था ये हमारे गले डाल देते कि ये जो इनकी बेल मुंडे नहीं चढ़ी इसमें ये लोग रुकावट थे। बहुत अच्छा ये एक्सपोज हुए। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये भी बताइए उसामा कि इस सीज फायर को अगर ये एक साल घसीटते हैं, जो मुझे लग रहा है और जो हमारी पार्टी की फीलिंग है, या इससे भी ज्यादा, तो ये कहां कहां सराइयत कर जाएगा मर्ज। आज आपका हर नेबर ईरान की, आपने आज की स्टेटमेंट देखी होगी, ईरान ने आपको खुलम खुला कह दिया कि आपका मुल्क वो है जो दहशतगर्दों को पनाह देता है, अफगानिस्तान आपसे नाला है, इंडिया आपसे पहले ही इस किस्म के हर फोरम पे आप पे इल्जाम लगाता है, उसके बाद बांग्लादेश आपका झंडा लहराने से अपने मुल्क में उन्होंने मना कर दिया है। आप मुझे बताइए हमने इस मुल्क में रहना है?
जो नहीं चाहता मुजाकरात, जो बात नहीं चाहता जाके खुद लड़ ले, तो हम किस किस से लड़ेंगे?
चूड़ियाँ पहन ले हम लड़ लेते हैं, फिर ये वजीर आजम और ये वजीर आला हमारे सरों से हटे तो फिर हम लड़ लेते हैं। आखिर में मरना ही है, अगर मरना है तो ठीक है, लड़ के मरना बेहतर है। इस किस्म की बुजदिल की आदत से तो बेहतर है कि हम लड़ के मर जाएं। और दूसरी बात ये है उसामा, क्या आप मुझे बताएं क्या हमने इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है, या हमने वजीरिस्तान की टेरिटरी को सीट करके उनको दे के, जो मुझे लग रहा है आप उनको देने लगे हैं, एक एमिरेट बना के उसके साथ ही सिर्फ ताल्लुकात रखने हैं, और इस तरीके से इस असूल पे आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ भी फिर आप कर लें, अगर यही अमन का तरीका है तो उनके साथ मुजाकरात करके उन्हें बलूचिस्तान दे दें, इंडिया से कश्मीर पे आप दस्तबरदार हो जाएं और वहां भी आपके साथ अमन हो जाएगा। फिर ये इस एक ही आप अमन की अगर ये डेफिनेशन है, अगर अमन की डेफिनेशन है कि स्टेट एक बिल्कुल यूजलेस, और मैं ये कहती हूँ कि वो दिन दूर नहीं आए, आई डोंट लाइक टू से दिस, मगर मुझे नजर आ रहा है कि लोग खुद कहेंगे कि फौजियों को आवाज देंगे कि हमें बचाओ, और उन 60,000 लोगों के आप रिश्तेदारों से, उन 60,000 लोगों के आप लवाहिकीन से पूछे बगैर, शरीयत के मुताबिक कसास और दियत का भी लॉ अप्लाई किए बगैर किस तरीके से उनका खून माफ करें, किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत आप उनका खून माफ करें? और अगर आपने मुजाकरात करने हैं तो फिर आप इनके आगे से, इस तहरीक के आगे से, तालिबान के आगे से प्रोस्क्राइब या कलदम का लफ्ज क्यों हटाने की जरूरत नहीं करते? वहां भी आप बुजदिल हैं,
सही,
मतलब हर तरफ से एक बुजदिल की आदत हम पे मुसलत हो गई है।
सही सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका प्रमिशा खान। बहुत जज्बात नौजवान रानुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, वो कह रही है कि मुजाकरात जो है बुजदली है, और मौलाना सिमल अपने जो बयान है उसके लिए कौम, वो कहती है हम जाके लड़ लेंगे, इस तरह के बयान ना दिए जाएं। अवाम खबरदार होशियार हो जाएं। खबर ये आई है कि वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF को यकीन दहानी करवा दी है कि 300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा बिल देने वाले सार्फिन से वसूल किया जाएगा। यानी आसान लफ्जों में समझें तो जो लोग बिल देते हैं उन्हें बिल देने की सजा दी जाएगी, बिजली चोरी करने वालों के बिल भी ये सारिफ भरेंगे, नादहिंदगान के वाजिबात भी उनसे वसूल किए जाएंगे, लाइन लॉसेस भी इन्हीं की जेब से निकाले जाएंगे। हकीकत यह है कि जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत का आगाज किया तो गर्दिशी कर्जों की मालियत 480 अरब रुपए थी। हुकूमत ने बैंकों से 11% सूद पर कर्ज लेकर गर्दिशी कर्जों की अदायगी की। ये गर्दिशी कर्जा अब सूद समेत सार्फिन से वसूल किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को तहरीरी यकीन दहानी करवा दी है, और अब होगा ये कि पाकिस्तान के इदारे जिनके खराजात अपनी आमदन से कहीं ज्यादा हैं ये रकम अदा नहीं करेंगे, बल्कि नादहिंदा इदारों, बिजली चोरों और दीगर लाइन लॉसेस की कसर भी बिल देने वाले कानून पसंद शहरियों से लेकर उन्हें पाकिस्तानी होने की सजा दी जाएगी। यानी 300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा बिना सूद बिल देने वालों से वसूल किए जाएंगे। इसी बारे में हमारे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये तो जुल्म है कि जो लोग बिल दे रहे हैं पहले ही गर्दिशी कर्ज यानी 300 अरब रुपए बिना सूद उनसे वसूल किए जाएंगे, IMF को यकीन दहानी भी करवा दी गई है और कोई रास्ता नहीं हमारे पास?
नहीं देखिये, रास्ता तो बेशक है, लेकिन मसला ये है कि क्या ये यकीन दहानी वफाकी हुकूमत ने खुद कराई है या उनके साथ हमारे अलहमदुल्ला चारों सूबे भी शामिल है, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे पास जो इनका कमिटमेंट है, जो जिस पर दस्तखत है वजीर खजाना की भी, उसकी की लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। वफाकी हुकूमत ने आला तरीन सतह पर सूबों की हिमायत से एनर्जी पॉलिसी मंजूर की है जिसके तहत वक्तन फवक्तन बिजली के नरखों में इजाफा किया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बिजली और पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं तो बाज जो है सियासी पार्टियां चीख चीख के कहती हैं जी जुल्म हो गया, और वहां जाके दस्तखत कराते हैं, तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, तो पहले तो ये तय होना चाहिए। तो इस हफ्ते तो ये,
लेकिन शाहिद साहब सूबे ने तो भी बिल अदा करने, अरबों रुपया इदारों ने देना है, वो तो खुश होंगे कि अच्छा है हमें भी बिल नहीं देने पड़ेंगे किसी भी सूबे को, उनके बड़े बड़े इदारों को, वज़ीर आला के दफ्तर हो, दीगर हो, असेंबलियां हो, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा, आम आदमी जो बिल दे रहा है उसी से ले लो, ये तो बड़ा आसान है, मौजे हो जाएंगे।
नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये था कि चारों सूबों ने इस बात की को सपोर्ट किया है कि ये जो जो बिजली की चोरी है, जो शाहाना अखराजात के नुकसान हैं, जो बिल अदा नहीं होते और जो कर्जों का सूद है, ये तमाम नुकसान, टैक्सों की चोरी के नुकसान, ये तमाम नुकसान बिजली के नर्ख बढ़ा के वसूल कर लिए जाए। तो हमारा तो सवाल ये है कि हमारी खेती में अल्हम्दुलिल्लाह एक हुकूमत है, जो मिसाली हुकूमत की बात कर रहे थे, ये सब क्यों इस पर दस्तखत कर गए? ये क्या सवाल पैदा हो रहा है कि सूबों ने इसकी मंजूरी क्यों दे दी? तो जो चीज़ मैं आपकी खिदमत में करना चाह रहा हूँ वो ये है,
मुझे आखिर में बताएं शायद सिद्दीकी साहब, वो 1.5 अरब डॉलर जो सऊदी अरब से आए थे, डॉलर की कीमत जो नीचे गई थी, कहा गया महंगाई कम हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा हमें वहां से देकर या बजट में से? जब आप इसहाक डार साहब ने कह दिया है कि अगले बजट में ना तनख्वाहें बढ़ेंगी ना पेंशन बढ़ेगी, तो जब वो भी नहीं बढ़ानी तो फिर भी पैसे नहीं दे सकते आप लोगों को उनसे और बिजली जो है महंगी लेंगे?
नहीं देखिए, बस मसला मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस मुल्क में खेल हो रहा है वो ये है कि एक ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर है जो 33 मुल्कों की नुमाइंदगी है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने सरमायाकारी की है पाकिस्तान में, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर, वो ये कहते हैं अभी कि अगर मुस्लिम लीग का जो मंशूर है जिसमें सिर्फ एक क्लॉज है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद किया जाएगा, अगर ये हो जाए तो 2500 अरब रुपया एक साल में ज्यादा होगा, 2500 अरब रुपया एक साल में ज्यादा वसूल होगा। तो तो सवाल से भी ये पैदा हो रहा है कि जो मसला हमारा 30-40 साल से चल रहा है कि पाकिस्तान में जरी शोभा टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत लगाने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज वाले टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत लगाने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेडर्स जो है वो टैक्स नहीं देते, तो सिर्फ सारा पैसा ही जीएसटी और पेट्रोल और बिजली और तनख्वाह तबकों से आ रहा है और कौम ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है और एक गठजोड़ हो चुका है, तो ये इस किस्म की चीजें कि अगले साल तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, इस साल महंगाई बढ़ेगी, इस साल बिजली के नर्ख बढ़ेंगे और उन्होंने तो ये लिख दिया कि अगले 3 साल तक बिजली के नर्ख बढ़ते रहेंगे, ये तो दस्तक करके दे दिया है इतना तो, और मेरे ख्याल से तो गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे, तो ये तो फैसला हमें करना होगा कि हम असासे बेचकर और टैक्सों की चोरी के नुकसान पूरे करेंगे, टैक्सों की चोरी जो है बिजली के नर्ख बढ़ा के करेंगे, अगर कौम इसके लिए तैयार है और सूबे तैयार है तो फिर क्या हो सकता है,
कौम के पास लगता है रास्ता ही और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, IMF तो एग्रीमेंट हो चुका है कि ये गर्दिशी कर्जे भी वो लोग देंगे जो पहले ही बिल अदा कर रहे हैं, टैक्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, जो टैक्स चोर हैं ना उनसे टैक्स लिया जाएगा और ना बिजली चोरों से बिजली के वाजिबात वसूल किए जाएंगे, जो पाकिस्तानी शहरी कानून पर अमल कर रहा है वही भुगते। न्यूज आर मिलेंगे ब्रेक के बाद और बात होगी अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब से।
हुकूमत बने 10 माह हो चले लेकिन वफाकी वज़ीर दाखला की तरफ से कोई खैर की खबर नहीं, चौधरी निसार की कारकर्दगी का जायजा लेंगे कि क्या करते हैं ये वज़ीराने किराम।
परसों कौमी असेंबली में शेख रशीद अहमद को कनाडा जाने से रोकने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में झड़प हो गई, हंगामा वजीर दाखला चौधरी निसार के जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में रिमार्क्स के बाद शुरू हुआ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि वफाकी वजीर दाखला के तुंदो तेज लहजे और शोला बयानी ने अपोजिशन को भड़काया है। 6 नवंबर को सेनेट में दहशतगर्दी के गलत अदादोशुमार पेश करने पर होने वाली हंगामा आरई हो या फिर दिसंबर में कौमी असेंबली के तमाशा के लफ्ज की गूंज, चौधरी निसार अपनी हर बात पर डटे रहे।
तमाशा लगाया गया थम इंप्रेशन के हवाले से एक जमात की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं एक जमात की तरफ से।
अपोजिशन ने सेनेट का इजलास ऐवान के बाहर सजाया, कौमी असेंबली में अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया मगर चौधरी निसार ने माफी नहीं मांगनी थी ना मांगी, बल्कि कहा यह भी जाता है कि चौधरी निसार ने अंगूठों के मामले पर बात न मानने की सजा चेयरमैन नादरा को बरतरफी की शक्ल में दी। 10 महीने से चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखला के ओहदे पर बराजमान है, मुल्क की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है मगर 16 अगस्त को सिकंदर नामी शख्स ने 2 बंदूकों के साथ इस्लामाबाद की सख्त सिक्योरिटी के पूरे निजाम को फारिग साबित कर दिया। 3 मार्च को क्या हुआ जब दहशत गर्दों ने इस्लामाबाद के चेहरी में घुसकर जज समेत 11 अफराद को कत्ल कर डाला, जबकि इससे चंद दिन पहले 20 फरवरी को वज़ीर दाखला ने बड़े जोम से यह दावा किया।
पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद एक महफूज शहर है
मगर कुर्बान जाइए चौधरी निसार के जिन्होंने जज की हलाकत का जिम्मेदार गार्ड को करार देकर जाने क्या साबित करना चाहा।
गार्ड हैज कन्फेस्ड, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कोई क्लेशनकोफ का की गोली नहीं लगी उनको, 9mm पिस्टल की लगी है जो उस गार्ड के पास है, मगर ये बाकी बातें तो पीछे छोड़ देना, गार्ड ने कन्फेस कर लिया, खुद कन्फेस कर लिया।
चौधरी निसार के इस बयान के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला सरापा एहतजाज हैं, चौधरी निसार की कारकर्दगी जांचने का एक और पैमाना कराची ऑपरेशन भी है।
एक खाका मैंने कराची में उसका जिक्र किया था, एक दफा एक्शन शुरू हो तो मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा पकड़ा जाए तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं कि जी नहीं ये तो इसको तो छोड़ दें, MQM का पकड़ा जाए तो वो कहें नहीं ये छोड़ दें, पीपल्स पार्टी का या ANP का या तरीके इंसाफ का, ये पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए।
मगर सूरत हाल है कि 7 महीने बाद भी रेंजर्स शिकवा तराज है कि जराइम पेशा अफराद के सर से सियासी छतरी नहीं हटी, बतौर अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ने बहुत से दावे किए थे मगर हकीकत यह है कि तालिबान से मुजाकरात के अलावा अब तक इन दावों के हवाले से कोई पेशरफ नजर नहीं आई। बतौर वजीर दाखिला चौधरी निसार कामयाब साबित हुए हैं या नाकाम ये पूछेंगे अपोजिशन लीडर जनाब खुर्शीद शाह से। खुर्शीद शाह साहब आप ये बताएं कि आप बतौर वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब को कामयाब समझते हैं नाकाम?
यार अगर आप चौधरी साहब को कहेंगे कि इन हालात के बावजूद भी कामयाब वजीर दाखला कहें तो बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह करे वो कामयाब हो, अल्लाह करे कामयाब हो, मैं इसको ये नहीं कहता कि अब नाकाम है, मैं उनको दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, इस मुल्क में इस शहर में अमन ले आए।
बतौर वजीर दाखला चौधरी निसार साहब की सबसे बड़ी नाकामी फिर क्या है आपकी नज़र?
देखें जो उसने अभी तक कहा है उसको वो अमल नहीं करवा सका है। सिर्फ बातों से ऐलानात से बात नहीं होती, ये खुद कहते थे खड़े होके ऐलानात से कोई बात होती नहीं है, ऐलानात से कोई अमन नहीं आता। वो आपके सामने है कि अमन कितना है, क्या उसका कोई बड़ा कारनामा बता दें कि इस वक्त उसने कोई इतना बड़ा कारनामा किया हो जिसको हम कहें कि जी कमाल कर दिया। 23 FC के लोग मर गए वहाँ, जो वाकयात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, गिरजा में वाकयात हुए, बाजार में वाकयात हुए, स्कूल में वाकया हुआ, फौजी जवान मारे गए, वो MPA मारे गए, ये तो अब फिर भी दहशतगर्दी है। वो खुद तो नहीं होगा कि जाए जाके वो मार के आए, कोशिश करता होगा, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कोशिश ना करे, मगर ये ना कहे कि बाकी सारे गलत थे मैं सही।
लेकिन पहली बार हुकूमत के बराह रास्त मुज़ाकरात तालिबान से, ये उनकी कामयाबी नहीं?
देखे मुझे मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे ये डायलॉग कामयाब जाए तो फिर हम मानेंगे कि इनका बड़ा कारनामा है। मैं सबसे पहले मैं मानूंगा कि ये कारनामा हो जाए इनका। और अगर वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ तो इतना जुडिशरी में हुआ, इतना बाजोड़ में हुआ, खैबर एजेंसी में हुआ, कोई मेजर मारे, इतना कुछ हुआ, अब वो अगर उसको नज़र नहीं आता और कहते हैं कि कोई और तरजीह में है तो अब उनको क्या कर सकते हैं, क्या उनको समझा सकते हैं।
लेकिन कराची ऑपरेशन तो उन्होंने ही शुरू किया और वहां हमने काफी बेहतरी देखी है, तो उनकी कामयाबी है वहां तो बेहतरी नजर आई, मुज़ाकरात की कामयाबी तो बाद की बात है लेकिन कराची में तो बेहतरी नजर आई।
देखे अगर 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 सूबाई हुकूमत की विल न हो, सूबाई हुकूमत करना न चाहे तो वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है। ये तो ठीक है कि हम मिल के ही हर चीज़ को रोक सकते हैं। अगर आज तालिबान के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो और या कोई डायलाग हो, अपोजिशन उसके आड़े आके खड़ी हो जाए तो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो ना। मगर हम वहाँ उनसे तावन इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए नहीं मगर मुल्क के लिए कोई बेहतरी हो। तो अभी देखिए चौधरी निसार के एटीट्यूड से पार्लियामेंट का जो एक बड़ा हिस्सा है जिसको सेनेट कहते हैं उसमें वो मौसूफ नहीं जाते, उससे नाराज होके गए नाराज। अरे भाई हुकूमत के बदला पार्लियामेंटेरियन से नाराज होते हैं, वो तो उनको मनाने जाते हैं, अपोजिशन को मनाते हैं, ये उल्टा उनके ऊपर नाराज और वहाँ जाते नहीं। मियाँ साहब भी वहाँ ना जाए सेनेट में, उनका नंबर वन खिलाड़ी जो है ओपनिंग बैट्समैन वो भी सेनेट में ना जाए। तो पार्लियामेंट की जो तकद्दस है उसको ही जब दो बड़े तस्लीम करने के लिए तैयार न हो और नाराजगी का इजहार करते रहे तो बताएं फिर कैसे ये इनकी पार्लियामेंट में, तो उनको तकलीफ होंगी। अभी तो बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, हो सकता है आगे चल के इनके रवैयों से और माहौल ख़राब हो जाए। हम नहीं चाहते कि माजी की तरह इसके अब ये इस किस्म की दूरियाँ पैदा हों, वो पर्सनलाइज हों। तो मियाँ साहब को भी चाहिए कि चौधरी निसार को बिठा के प्यार और मोहब्बत से उनको समझाए कि भाई थोड़ा ठंडे हो जाओ, अब तो वजीर हो, तुझे फल लग चुका है, तुझे झुकना चाहिए, तुझे लड़ना नहीं चाहिए।
क्या क्या इस्लामाबाद को उन्होंने कम से कम इस्लामाबाद को महफूज नहीं बना दिया वज़ीर दाखला ने?
अभी इस्लामाबाद में आप आए तो पता नहीं कितने नाकों पे खड़े होते हैं, वो कहते हैं मैं पहले दिन आऊँगा ये नाके बाके सारे ख़त्म कर दूंगा। और अभी आप देखें कि जितना क्राइम यहाँ इस्लामाबाद में बढ़ गया है, और अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ अपने कोर्ट जुडिशरी में, वो आपने देखा कि कितना दर्दनाक और तकलीफदा वाकया था कि शहर के अंदर एक जिसके ऑफिस के सामने, जिस कोर्ट के सामने SP की ऑफिस हो, DC की ऑफिस हो, कमिश्नर हो, और 10-15 कहते हैं 20-22 गार्ड थे, वो क्रम आ जाते हैं दहशतगर्द धमाका करते हैं, मार के 12-13 आदमी को चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता वहाँ पे। अल्दो वो इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि जी दो बंदे थे उन लोगों ने धमाका किया, वो मर गए, उसमें काफ़ी लोग मर गए और जो जज है उसको अपने गार्ड ने मार दिया। और देखें जी इस किस्म की बात करना और बग़ैर किसी कंफर्मेशन के, बग़ैर किसी तो आपने देखा उसके बाद इमीडिएटली जो फाइंडिंग कमेटी है, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी है, उसने कहा कि नहीं जी उसको तो उस दहशतगर्द ने मारा। तो ये चीज़ें उसके नेचुरली उस पर तनकीद होगी। और जो दूसरी बातें वो करते रहते हैं, कभी तालिबान के सिलसिले में हमारे ज़माने में जो बातें करते थे या अब आज करते हैं, तो ये चीज़ें एज ए मिनिस्टर इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन उनको जेब नहीं देती कि वो खड़े होके इस किस्म की बातें, उसमें लचक आनी चाहिए।
चौधरी सर ये भी कहते हैं कि कोई नहीं ला सका नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इतनी दहशतगर्दी होती रही, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम निकाब की हुकूमत हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं ला सका, ये उनका कारनामा है, वो पहली बार ये लेकर आए।
नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी हम लेके आए थे, रहमान मलिक ने जो हमने बनाई थी, यूसी ने और रहमान मलिक के इंटीरियर मिनिस्टर वो थे, तो काफ़ी चीज़ें तो इस सिक्योरिटी पॉलिसी में उससे डाली गई है, उस पॉलिसी की। वो तो इन लोगों ने हमें आने नहीं दिया ना, इन लोगों ने रोका, नहीं लाने दिए, हम तो उनको लाने दे रहे हैं कि ठीक है जी ले आए, बेहतर पॉलिसी जो होगी ले।
आखिर में ये बता दें कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो इतने नाराज क्यों हैं अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी से, दीगर जमातों से, कोई तो वजह होगी, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, क्यों नाराज
हैं? बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और माशाल्लाह 8 मरतबा वो असेंबली में आ चुके हैं, इस पार्लियामेंट में उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, और इससे पहले भी वो मिनिस्टर रह चुके हैं इस पार्लियामेंट में, मेरे साथ उनके बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं, और असल में मुझे समझ में नहीं आता कि इस मरतबा चौधरी निसार को क्या हो गया है कि जो उसकी पार्लियामेंट्री जो उसके नॉर्म्स हैं वो ज़रा उससे बाहर खेल रहे हैं। मुझे सच्ची बात है, उसकी पुरानी हिस्ट्री को देख के और अभी देख के मुझे अफसोस होता है कि वो क्यों इस किस्म की बातें करते हैं, वो किस किस्म की जैसे रिजिट किस्म की सियासत की जाती है तो उस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं। तो मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन उसका पुराना हम दोस्त भी रहे हैं, एक साथ हमने अपोजिशन में भी वक्त गुजारा है और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, अब भी मुझे उनके लिए एहतराम है, मगर सियासत में जिद नहीं होती, सियासत में चिड़ नहीं होती, सियासत में लचक होती है, सियासत में एक दूसरे को स्पेस दिया जाता है। अगर मैं अपोजिशन में हूँ कुछ बात करता हूँ तो एज ए मिनिस्टर उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और उससे नवाज शरीफ की टीम का वो फर्स्ट ओपनर है, वो अगर नवाज शरीफ की टीम का ओपनर इस पोजीशन में हो कि वो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन का एहतराम न करे और कभी पार्लियामेंटेरियन को पहलवानी का दर्स दे दे, कभी तमाशे की बात कर दे, तो ये उसको जेब नहीं देती, उसको चाहिए कि इतने बड़े सियासतदान के नाते से उसके ऊपर बड़ी अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसके अंदर लचक होनी चाहिए। और ये ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर है, जो उसकी नाकामियां हैं वो उनके सामने तो आएंगी। अब रहमान मलिक साहब थे, क्या कुछ उनसे नहीं बोला जाता था, मगर वो कभी भी किसी के साथ पर्सनल नहीं हुए, नहीं किसी को उसने पर्सनल अटैक किए। तो आज चौधरी साहब की अगर कोई नाकामी होती है, वो पार्लियामेंट में अगर उनके ऊपर तबसरा होता है, क्योंकि चौधरी साहब जब अपोजिशन में थे तो उनके बड़े बड़े दावे थे, उस दावे की वजह से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है ना, कि अपने वक्त में वो जो दावे करते थे कि ये नाअहल हैं, नालायक हैं, इनकी नाअहली की वजह से इस्लामाबाद अजाब में है, ये मुल्क अजाब में है, इनको कुछ नहीं होता, ये ऐयाशियाँ कर रहे हैं, इस किस्म की वो उसकी तकरीर होती थी, और ये बड़े बड़े ऐलान करते हैं, कोई उस पर अमल नहीं होता।
यानी आप किसी भी तरह चौधरी निसार साहब को कामयाब वज़ीर दाखला नहीं देख रहे? बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, क्योंकि वो दुआगो हैं कि वो कामयाब हों, लेकिन अभी तक उनको समझते हैं कि कामयाब नहीं है और काफ़ी सख्ती है उनकी तबीयत में, जो कि नहीं होनी चाहिए एक बड़े सियासतदान में। बहरहाल असल फैसला तो आवाम ने करना है कारकर्दगी का। न्यूज़ आर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।